एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां ड्रामा, राजनीति, सत्ता का खेल सब कुछ भरपूर था।
हाँ, इंग्लैंड का ट्यूडर राजवंश।
बिल्कुल, लगभग 125 साल है ना।
हाँ,
1485 से 1603 तक।
हाँ, और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देख रहे हैं जॉन गाय के काम को। वो एक जाने माने इतिहासकार हैं, ट्यूडर काल के तो एक्सपर्ट माने जाते हैं।
सही, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसा खानदान जिसका राजा बनने का दावा ही बड़ा कमजोर सा था,
हाँ, टिका कैसे,
न सिर्फ टिका रहा बल्कि इंग्लैंड का पूरा नक्शा ही बदल दिया, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सब कुछ।
बिल्कुल, और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये तो आज भी उतनी ही जरूरी बातें हैं।
हाँ, कैसे लीडरशिप काम करती है, कैसे नेताओं की अपनी निजी जिंदगी, उनके डर, वो सब
पूरे देश की किस्मत बदल देते हैं, और मुश्किल वक्त में कैसे बड़े बदलाव होते हैं, ये तो आज भी हम देखते हैं, राजनीति में, बिजनेस में, हर जगह।
सही कहा। तो चलें फिर जॉन गाय की नजर से देखते हैं इस उथल पुथल भरी कहानी को।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहले जॉन गाय के बारे में थोड़ी बात कर लें, ये कौन है, इनका क्या नजरिया है।
हाँ जरूर। जॉन गाय, जैसा आपने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं और ट्यूडर इतिहास पर इनकी पकड़ तो कमाल की है।
और इनकी खास बात क्या है?
खास बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाते, ये सीधे पुराने सरकारी कागजात, चिट्ठियां, राजदूतों की रिपोर्ट्स, जो असली सबूत है ना,
प्राइमरी सोर्सेस,
उनमें गहराई तक जाते हैं।
हाँ, उनमें गोते लगाते हैं।
दशकों का अनुभव है, 15 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं,
और इसी वजह से शायद उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो जो जैसे हेनरी 8 और उनकी 6 पत्नियों की वो जो चटपटी कहानियां,
हाँ हाँ, जो बहुत पॉपुलर है,
या रानी एलिजाबेथ की वो एकदम शानदार छवि, वो उसके पीछे देखते हैं, वो इन राजा रानियों को असल इंसानों की तरह देखते हैं,
जिनमें कमियां भी थी।
हाँ, जो डरते भी थे, जो हिसाब किताब लगाकर मुश्किल फैसले ले रहे थे, बिल्कुल रियल टाइम में, उस सत्ता के गलियारों की अंदरूनी कहानी बताते हैं।
अच्छा, तो फिर जॉन गाय का निचोड़ क्या है, उनकी मुख्य बात क्या है इस पूरे ट्यूडर दौर के बारे में?
देखिए, गाय का कहना है कि ये कोई पहले से तय सुनहरा दौर, गोल्डन एज, वैसा कुछ नहीं था। बल्कि एक स्रोत जैसा कहता है, ये तो सिंहासन पर बेहद कमजोर दावे के साथ शुरू हुआ और लगातार बस अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई थी,
कई बार तो बिल्कुल हताशा वाली।
हाँ, और दूसरा स्रोत इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नाटक नहीं थे, ये वो टाइम था जब इंग्लैंड के सरकारी तौर तरीके, इंस्टीट्यूशंस, उनमें बड़े बदलाव हुए।
अच्छा।
और उन बदलावों ने इंग्लैंड की राजनीति, धर्म, समाज, सबकी नींव ही बदल दी। तो फिर सवाल वही है, इतना कमजोर दावा लेकर ये लोग टिके कैसे और इतना कुछ बदल कैसे दिया?
गाय का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं ये कई चीजों का मिक्सचर था। एक तो बेरहम किस्म की व्यावहारिकता, जो जरूरी है वो करना है चाहे कितना भी कठोर हो,
रूथलेस प्रैग्मेटिज्म जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, मौके पर सही चाल चलने की कमाल की क्षमता, ब्रिलियंट पॉलिटिकल इम्प्रोवाइजेशन। तीसरा, एक मजबूत सरकारी मशीनरी खड़ी करना। चौथा, थोड़ी किस्मत भी थी। और हाँ, इन शासकों के अपने जो गहरे जुनून थे, डर थे, उनका भी बड़ा रोल था।
तो उन्होंने पुरानी राजशाही और नए जमाने के विचारों को मिलाया।
हाँ, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की। गाय हमें ट्यूडर इतिहास को पॉपुलर कहानियों से हटकर सबूतों के आधार पर देखने का नजरिया देते हैं।
ये कहानी है कि कैसे इंग्लैंड, जो पहले गृहयुद्धों से थका हारा बिखरा हुआ सा राज्य था,
वो कैसे एक मजबूत, सेंट्रलाइज्ड, आत्मविश्वास से भरे देश में बदला।
चलिए अब जरा एक एक करके इन शासकों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले ट्यूडर राजा हेनरी 7वें से, 1485 से 1509 तक।
हेनरी 7वें, इनका सिंहासन पर दावा तो जैसा हमने कहा बहुत ही कच्चा था।
हाँ, वो बोसवर्थ फील्ड की लड़ाई जीतना एक बड़ा रिस्क था, पर काम कर गया।
बिल्कुल, और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने समझदारी दिखाई, यॉर्क खानदान की एलिजाबेथ से शादी कर ली।
हाँ, वो ट्यूडर रोज वाला सिंबल वहीं से आया ना, लैंकास्टर और यॉर्क का मिलन।
सही।
लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई, साजिशें चलती रहीं।
ये वो लैम्बर्ट सिमनल, पर्किन वॉरबेग।
हाँ हाँ, वो झूठे दावेदार।
हाँ, जो कहते थे कि वो खोए हुए यॉर्क राजकुमार हैं।
इनसे निपटना बड़ा सिरदर्द था। गाय कहते हैं कि लोग हेनरी 7वें को कंजूस समझते हैं, पर वो कंजूस से ज्यादा सावधान, छुपे रुस्तम और माहिर खिलाड़ी थे, विंटर किंग,
ठंडे दिमाग वाले।
उन्होंने बड़े जमींदारों की ताकत कम की, खजाना भरा और डिप्लोमेसी से अपने नए राजवंश को मजबूत किया।
तो इनकी सबसे बड़ी दीन क्या थी?
स्थिरता, एक सुरक्षित गद्दी और भरा हुआ खजाना। गाय के मुताबिक ये सब डर, कंट्रोल और पक्की इच्छा शक्ति से आया। और हाँ, उन्होंने सरकारी कामकाज में कुछ सुधार भी शुरू किए जिनका फायदा बाद में मिला।
तो हेनरी VII ने तो नींव रख दी, लेकिन असली ड्रामा और तुथुल पुथुल तो उनके बेटे के साथ शुरू हुई, हेनरी VIII, इंग्लैंड के शायद सबसे मशहूर राजा, 1509 से 1547।
हाँ, हेनरी VIII तो अपने पिता से बिल्कुल अलग थे, एकदम रंगीले, खर्चीले, महत्वाकांक्षी, रेनेसांस प्रिंस जैसे। शुरू में तो राजकाज अपने मंत्री कार्डिनल वोल्सी पर छोड़ दिया, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बन गई एक बेटे की चाहत। पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरेगॉन उन्हें बेटा नहीं दे सकी, सिर्फ एक बेटी हुई, मैरी।
और यहीं से शुरू हुआ वो ग्रेट मैटा वाला किस्सा, कैथरीन से तलाक लेने की जिद।
और जब पोप ने मना कर दिया
तो हेनरी का ये पर्सनल प्रॉब्लम एक नेशनल क्राइसिस बन गया। इसमें दो लोगों का बड़ा रोल था, एन बोलिन, जिनसे हेनरी शादी करना चाहते थे,
और दूसरे थॉमस क्रॉमवेल, वो तेज दिमाग वाले मंत्री।
हाँ, क्रॉमवेल में वो कानूनी रास्ता निकाला जिससे इंग्लैंड का चर्च रोम से अलग हो गया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, हेनरी बन रहे चर्च के हेड।
गाइस, बात पर जोर देते हैं कि ये शुरुआत में कोई धर्म सुधार नहीं था, ये तो बस गद्दी बचाने और बेटा पैदा करने की हताशा में उठाया गया राजनीतिक कदम था।
हाँ, मतलब धर्म से ज्यादा इंग्लैंड की सॉवरेनिटी, उसकी आजादी का सवाल था ये।
लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं, एन बोलिन से भी बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई एलिजाबेथ, और उनका भी हश्र बुरा हुआ, फांसी दे दी गई।
उसके बाद तो हेनरी VIII और भी ज्यादा मनमौजी और क्रूर होते गए।
हाँ, वो मठों को बंद करवाना, उनकी जमीनें जब्त करना, क्रॉमवेल ने ये सब किया। शाही हजाना तो भरा पर समाज हिल गया।
कुल 6 शादियां की उन्होंने और रास्ते में आने वाले कई बड़े लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि थॉमस क्रॉमवेल को भी।
बाप रे, तो जब 1547 में उनके मौत हुई तब इंग्लैंड कैसा था?
बटा हुआ देश, अर्थव्यवस्था खस्ता हाल और वारिस को लेकर कंफ्यूजन, 3 बच्चे, अलग अलग माओं से, अलग अलग धार्मिक झुकाव।
हेनरी VIII के बाद का वक्त तो और भी गड़बड़ वाला लगता है। मिड ट्यूडर क्राइसिस, पहले बेटा एडवर्ड VI, फिर बेटी मेरी।
एडवर्ड VI तो बच्चे ही थे, 9 साल के, 1547 से 1553 तक असली ताकत सलाहकारों के हाथ में थी। उनके टाइम में इंग्लैंड तेजी से प्रोटेस्टेंट बना,
वो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वगैरह।
हाँ, लेकिन एडवर्ड जल्दी बीमार पड़ गए और मरते मरते अपनी कैथोलिक बहन मैरी को हटाकर लेडी जेन ग्रे को वारिस बनाने की कोशिश की, एक तरह का तख्ता पलट,
जो चला नहीं और मेरी रानी बनी 1553 से 1558 तक। उन्हें ब्लडी मैरी कहते हैं, पर गाय कहते हैं कि उनकी छवि को थोड़ा और समझना चाहिए। शुरू में तो लोग उनके साथ थे,
उनका मकसद साफ था, इंग्लैंड को वापस कैथोलिक बनाना।
पर वो कामयाब क्यों नहीं हुई?
गाय 2 वजह बताते हैं। एक तो स्पेन के राजा फिलिप II से शादी, जो लोगों को पसंद नहीं आई, और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स पर सख्ती, करीब 300 लोगों को जिंदा जलाया गया।
ओह,
इससे लोग कैथोलिक धर्म से और दूर हो गए, उनका राज दुख और नाकामी में बीता। पर एक अजीब बात हुई, एडवर्ड और मेरी दोनों ने अनजाने में राजा के धार्मिक अधिकारों को और मजबूत कर दिया,
जिसका फायदा मिला एलिजाबेथ को।
हाँ, ट्यूडर खानदान की आखिरी और शायद सबसे कामयाब शासक, रानी एलिजाबेथ I, 1558 से 1603, सर्वाइवर क्वीन।
बिल्कुल, उन्हें विरासत में मिला एक कंगाली की कगार पर खड़ा धर्म के नाम पर बटा हुआ देश। गाय उन्हें सियासी समझ और टिके रहने की कला का माहिर मानते हैं।
उन्होंने क्या किया?
पहला बड़ा काम था एलिजाबेथिन रिलीजियस सेटलमेंट, एक बीच का रास्ता। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट बना पर चर्च में कुछ पुरानी कैथोलिक रस्में भी रहने दी, ताकि ज्यादा झगड़ा ना हो।
लेकिन चुनौतियां तो उनके सामने भी थी, एक तो वारिस का सवाल, शादी नहीं की तो उनके बाद कौन?
हाँ, ये सवाल पूरी जिंदगी साथ रहा। और दूसरी मुसीबत थी उनके रिश्तेदार स्कॉटलैंड की रानी मेरी, कैथोलिक थी, इंग्लैंड की गद्दी पर दावा था,
और कैथोलिक साजिशों का केंद्र बन गई थी।
हाँ, आखिरकार एलिजाबेथ को उन्हें 1587 में फांसी देनी पड़ी। गाय मानते हैं कि ये राज बचाने के लिए जरूरी था, इसमें उनके सलाहकार विलियम सेसिल का बड़ा हाथ था।
उनके राज का दूसरा हिस्सा युद्धों से भरा रहा। 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को हराना एक बड़ी जीत थी।
हाँ, उससे इंग्लैंड का हौसला बहुत बढ़ा,
लेकिन लड़ाई चलती रही नीदरलैंड्स, आयरलैंड में भी। आखिरी सालों में आर्थिक मुश्किलें बढ़ीं, संसद से भी अनबन हुई, वो अर्ल ऑफ एसेक्स ने बगावत भी की थी।
लेकिन एलिजाबेथ ने अपना आखिरी काम बड़ी खूबी से किया। उन्होंने पक्का किया कि उनके बाद गद्दी स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स्थ को शांति से मिल जाए, जो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स के बेटे थे।
गाय के मुताबिक एलिजाबेथ के दौर में ही लिमिटेड मोनार्की यानी सीमित राजशाही की नींव पड़ी। राजा सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था।
उनकी असली काबिलियत शायद फटाफट फैसले लेने में नहीं बल्कि उलझाए रखने, टालम टोल करने और किसी तरह गाड़ी चलाते रहने में थी।
वाह, क्या कहानी है। तो इस पूरे दौर को देखें तो कुछ खास बातें बार बार सामने आती हैं, क्यों?
हाँ बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लेजिटिमेसी का सवाल, गद्दी पर बैठने का हक और वारिस का जुनून।
ट्यूडर राजा रानी हमेशा इस डर में रहे कि कहीं लोग उन्हें असली हकदार ना माने।
हाँ, इसीलिए बेटा पैदा करना या सही वारिस चुनना उनकी राजनीति का सेंटर पॉइंट था।
दूसरी बात, प्रैक्टिकल होना। गाय कहते हैं उनकी कामयाबी महान शख्सियत से ज्यादा सियासी समझदारी और जरूरत के हिसाब से ढल जाने में थी।
हाँ, जरूरत पड़ी तो बेरहम, जरूरत पड़ी तो समझौते किए। लीडरशिप में सिर्फ आदर्श नहीं चलते।
और ये कि पर्सनल और पॉलिटिकल कितना जुड़ा हुआ है, राजा रानी की शादी, बच्चे, सेहत, सबका असर देश पर।
सोचिए, हेनरी एट को बेटा चाहिए था और इसके लिए पूरे देश का धर्म बदल गया। आज भी होता है ये।
एक और बड़ी बात, सरकारी तौर तरीकों, इंस्टीट्यूशंस का बदलना। ट्यूडर दौर में इंग्लैंड पुरानी सामंती राजशाही से धीरे धीरे आधुनिक सरकार की तरफ बढ़ा।
क्रॉमवेल, सेसिल जैसे मंत्रियों ने सरकारी दफ्तरों, संसद की भूमिका को मजबूत किया। ये धीरे धीरे हुआ।
और धर्म का मामला, गाय उसे कैसे देखते हैं?
गाय मानते हैं कि धर्म सुधार अक्सर धार्मिक जोश से ज्यादा राजनीतिक जरूरत की वजह से हुआ। राजा अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, पोप के दखल से छुटकारा चाहते थे।
धर्म एक हथियार बन गया।
सलाहकारों और दरबार की गुटबाजी की भूमिका भी तो अहम थी। वोल्सी, क्रॉमवेल, सेसिल ये सिर्फ नौकर नहीं थे, सत्ता के खिलाड़ी थे।
और हाँ, उस मर्दों की दुनिया में औरतों का रोल, कैथरीन, एन बुलीन और खासकर दो रानियां मेरी और एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने दिखाया कि औरतें भी कितनी ताकतवर हो सकती हैं।
एलिजाबेथ ने तो कमाल ही किया, अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया।
जॉन गाय के विश्लेषण से कुछ बातें सच में सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे उनका ये कहना कि ट्यूडर राजशाही कोई जमी जमाई ताकतवर संस्था नहीं थी, बल्कि वो तो खत्म हो जाने के डर से लगातार चलती रहने वाली एक राजनीतिक मरम्मत का काम थी।
मतलब हमेशा संकट से जूझ रहे थे, बस बचने के लिए जुगाड़ लगा रहे थे।
हाँ, या फिर ये वाली बात कि इंग्लैंड का धर्म सुधार किसी लोकप्रिय आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक राजा के अपनी गद्दी और खानदान बचाने के संकट के हताश और कट्टरपंथी समाधान के तौर पर शुरू हुआ।
ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है कि इतने बड़े बदलाव की जड़ एक राजा की निजी परेशानी थी।
एलिजाबेथ के बारे में गाय का कहना भी बड़ा दिलचस्प है। एलिजाबेथ की काबिलियत फटाफट फैसले लेने में नहीं थी, जिससे वो अक्सर बचती थी, बल्कि गोलमोल बातें करने और सियासी तौर पर टिके रहने की कला में माहिर होने में थी।
कभी कभी कुछ न करना या टालना भी एक रणनीति हो सकती है।
और संस्थागत बदलावों की बात, उसके लिए गाय कहते हैं, ट्यूडर क्रांति कोई एक धमाके वाला बदलाव नहीं था, बल्कि धीरे धीरे नई मिसालों का जमा होना था, जिसने अंग्रेजी सरकार के मिजाज को जड़ से बदल दिया।
मतलब बड़े और टिकाऊ बदलाव अक्सर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं।
और आखिर में उनकी विरासत पर, ट्यूडर दौर के खत्म होते होते इंग्लैंड ने सीमित राजशाही का एक अनोखा रूप विकसित कर लिया था, जो राजा के अधिकार और संसद की भागीदारी और कानूनी बंदिशों के बीच संतुलन बनाता था।
ये उनकी शायद सबसे बड़ी राजनीतिक देन थी।
कमाल है, 500 साल पुरानी कहानी, लेकिन बातें कितनी आज की लगती हैं। लीडरशिप और मुश्किल हालात से निपटना, अलग अलग राजाओं के अलग अलग तरीके।
हाँ, कोई सावधान, कोई मनमौजी, कोई सिद्धांतों पर अड़ा, कोई एकदम प्रैक्टिकल। लचीलापन कितना जरूरी है और जिद के क्या खतरे हैं।
और पावर, सत्ता कभी परमानेंट नहीं होती, उसे साधना पड़ता है। ट्यूडर लोग अपनी इमेज बनाने, अपनी कहानी कहने में माहिर थे।
आज के मीडिया के जमाने में ये तो और भी ज्यादा सच है। अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं, ये बहुत जरूरी है।
बड़े बदलावों को संभालना भी एक सीख है। इंग्लैंड का धर्म परिवर्तन दिखाता है कि बड़े बदलाव उथल पुथल लाते हैं, विरोध होता है, नतीजे सोचे हुए नहीं निकलते,
सब मेसी होता है।
और उत्तराधिकार, सक्सेशन प्लानिंग, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो, परिवार, जब साफ नहीं होता कि आगे कौन संभालेगा, तो तो गड़बड़ होती है।
सत्ता का आराम से हाथ बदलना कितना जरूरी है।
और सरकार चलाने में संतुलन साधना अधिकार और सहमति के बीच, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच, ये चुनौती तो आज भी है।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या इतिहास सिर्फ ताकतवर लोगों की निजी इच्छाओं, उनके जुनून, उनकी कमजोरियों का नतीजा है, या फिर बड़ी संस्थाएं और समाज की लहरें उसे चलाती हैं?
ट्यूडर कहानी शायद यही दिखाती है कि सच कहीं बीच में है, कैसे निजी जिंदगी के ड्रामा से भी बड़े संस्थागत बदलाव आ सकते हैं।
जॉन गाय का विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि इतिहास पहले से लिखा नहीं होता। ट्यूडर राजवंश का बच जाना और कामयाब होना एक तरह से बाल बाल बचने जैसा था।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोगों की शख्सियत, राजनीति, धर्म, सरकारी ढांचे का विकास, ये सब मिलकर किसी देश की कहानी गढ़ते हैं।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैसे एक इंसान की निजी इच्छा, जैसे हेनरी VIII की बेटे की चाहत ने एक पूरे देश का धार्मिक और राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास कितना अप्रत्याशित और व्यक्तिगत हो सकता है।
और मेरे लिए ये देखना दिलचस्प था कि कैसे लगातार संकट और अस्थिरता के बीच भी धीरे धीरे संस्थागत विकास होता रहा, जिसने आधुनिक इंग्लैंड की नींव रखी। ये संकट में अवसर खोजने और व्यवहारिकता और अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।